Om Shanti. We are privileged to have amongst us Sister Rashmi Oza. You have heard her before in the morning, but she is a luminary before us. And unka agar main bio data aapko bataun, it's a very long bio data. She is the gold medalist in Master of Law degree from Mumbai University, postgraduate diploma in human rights from Mumbai University, and she has also been conferred doctorate degree on human rights and gender inequalities in India. Currently, she is chair professor of Chief Justice M.C. Chagla Chair established in the Department of Law, University of Mumbai. And she is the former head Department of Law and former dean of Interdisciplinary Studies in Mumbai University. तो आप पीएचडी न केवल की हुई हैं बल्कि कितने ही स्टूडेंट्स को कराती रही हैं. आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है एज एन एडवोकेट एंड सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल फॉर अबाउट 12 इयर्स एंड साइमल्टेनियसली आपने टीचिंग जॉब भी किया हुआ है. इन जुलाई 1998 शी हैड प्रिविलेज टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रांस वेयर शी ऑल्सो कम्प्लीटेड टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स in human rights. I think this should deserve a round of applause, please. And this is really a very long bio data that I have. And she's been associated in Brahma Kumaris since childhood, and now she is an invaluable member of Jurist Wing, also serving as the national coordinator. Her subject today is revisiting convergence between spiritual laws and legal laws. So I invite Dr. Rashmi Oza for a very, very beautiful speech today. Please be attentive.
Om Shanti. Most revered Supreme Godfather Parampita Shiv Paramatma, whom we address as Shiv Baba, all the esteemed delegates, participants at this conference, and perhaps there are few students as well, all these students, a very good evening to one and all. I have a limited span of time, and I have to address on revisiting convergence between spiritual laws and legal laws. तो स्पिरिचुअल लॉज आज जैसे सुबह ही चर्चा हुई थी, काफी सारे स्पीकर्स ने बताया कि व्हाट आर स्पिरिचुअल लॉज एंड हाउ डू वी ब्लेंड, उनका ब्लेंड हो सकता है कि नहीं हमारे रेगुलर लॉज से. सो आई विल बी एक्सप्रेसिंग फ्यू ऑफ माय व्यूज. थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा बोलूंगी क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल हूं, और लेकिन हिंदी का प्रयोग भी कर लूंगी. उतनी फ्लुएंसी नहीं है लेकिन कोशिश जरूर रहेगी कि हिंदी में ही मैं अपने विचार रखूं आपके समक्ष. सुबह जब इनॉग्युरल सेशन था तब हमने काफी सारी चीजें सुनी कई वक्ताओं से कि लॉ, सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी, उसका हम बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव कैसे रख सकते हैं. ये टॉपिक जो अब जिस पर मैं विचार कर आपके समक्ष रख रही हूं वो भी कुछ सिमिलर ही है, लेकिन मैं दृष्टांत देके आपके समक्ष रखूंगी. तो सबसे जब बात होती है स्पिरिचुअल लॉज, ऐसे कोई लॉज है जिसको हम स्पिरिचुअल लॉज कह सकते हैं. लीगल लॉज तो आप सभी विद्वान हो, आप सभी को पता है इतने सारे लॉज कानून बने हुए हैं हमारे देश में, लेकिन ये स्पिरिचुअल लॉज क्या है, वो इनैक्टेड लॉज है कि क्या है. तो स्पिरिचुअल लॉज हम क्यों उनको टाइटल या नॉमेनक्लेचर देते हैं कि इनको स्पिरिचुअल लॉज कहा जाता है, और इनका रेगुलर कानून से क्या महत्व है. तो एक दृष्टांत मुझे 1884-85 का याद आ रहा है. 1884 में एक कपल थे, जेन एंड लीलैंड स्टैनफोर्ड उनका नाम था, और उनका एक ही बेटा था 15 साल का. और 1884 में सीवियर टाइफॉइड की वजह से वो उनका बेटा चल बसा, शरीर छोड़ दिया, ही पास्ड अवे। और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तब उसने फर्स्ट ईयर की एडमिशन ले रखी थी, काफी अच्छा होशियार बच्चा था। तो जैसे ही वो चल बसा तो ये माता पिता के मन में आया कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में उसका बेटा पढ़ रहा था, तो क्यों ना हम कुछ वो यूनिवर्सिटी के लिए करें। यह एक सत्य घटना है। और अपॉइंटमेंट लेके प्रेसिडेंट की ऑफ द यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अपॉइंटमेंट लेके वो गए उनसे मिलने। काफी देर तक दोनों बाहर उनको बिठा के रखा, क्योंकि बाय अपीयरेंस वो बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान थे, बिल्कुल सिंपल से इंसान थे। तो प्रेसिडेंट की और कई मीटिंग्स चली, तो काफी समय तक, शायद 2-3 घंटे उनको वेट करना पड़ा। जैसे ही उनको थोड़ी फुर्सत मिली, उन्होंने ये कपल को अंदर बुलाया और कहा कि कहिए आपको क्यों मिलना है। तो उन्होंने कहा 1884 में हमारा बच्चा, दैट्स लीलैंड जूनियर, आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और वो मर चुका है, तो उसकी मेमोरी में हम कुछ करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने कहा आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा नाम है, यहाँ के क्लासरूम्स, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और ये यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने में कितनी कीमत जाती है, कितना बड़ा अमाउंट जाता है, वो आपको पता है। तो उन्होंने कहा नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं आपको, इट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1 to 5 billion ये पूरी यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने में, क्लासरूम मेंटेन करने में। तो और आप प्लीज, लग नहीं रहा है कि आप कुछ मदद कर सकोगे आपके बेटे की मेमोरी में। और वो दोनों बाहर निकल गए, बिल्कुल छोटा सा मुंह लिए। जैसे ही वो बाहर निकले, एक दूसरे की तरफ वो कपल देख के हंसने लगे। उन्होंने कहा कि 1 to 5 billion में तो हम अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने वो कर दिखाया, एंड दैट इज स्टिल टूडे नेम्ड एज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी बेटे की मेमोरी में। और वह ना कि हार्वर्ड, बाकी पूरे विश्व में इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। तो ये जो है कि पीपल गो फॉर लुक्स, पीपल गो फॉर अपियरेंस, स्टेटस क्या है, पोजिशंस क्या है, पद क्या है, पैसे कितने हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअल लॉज जिसको हम कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्च्यूज जिसमें बसे हैं, वो अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हम कंपैरिजन अगर करने जाए, तो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कितने सारे, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्टिव कोर्स ऑप्ट किया है फॉर हैप्पीनेस। तो इसका मतलब यही रहा कि दे फील कि दे आर नॉट हैप्पी एंड देयर फोर दे डिजर्व हैप्पीनेस, और उन्होंने वो कोर्स कर रहे हैं, उनके प्रोफेसर बेन शहर है और वो हैप्पीनेस के लिए उनको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड हैप्पीनेस एज एन इलेक्टिव कोर्स। तो ये जो गर्व है, ये जो ईगो है, बाबा हमें रोज की मुरली में यही सिखाते हैं कि 5 जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें अहंकार एक विकार, इट्स अ वाइज, इट्स नॉट अ वर्च्यू, इट्स अ वाइज। तो ये जो विकार है वो हम किस तरह से अपने से दूर रखें ताकि हमारी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हो, और इसी को हम स्पिरिचुअल लॉज यहाँ संस्था में नाम देते हैं। मुझे याद है कि हम इस करंट ईरा में कुछ, मैं बॉम्बे से हूँ और कुछ लोगों से जब मिलती हूँ तो वो कहते हैं हमारा ये टाइम तो जिम जाने का है, ये टाइम ये है ये, तो जिम का आजकल बड़ा फैशन हो गया है। तो वैसे ही एक जिम के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने किसी एक इंसान जो स्पिरिचुअल नॉलेज में भरपूर था उनसे पूछा कि डू यू एक्सरसाइज एवरी डे, तो उस इंसान ने कहा कि यस आई डू एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट ओवर दिस फाइव वाइजेस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एंड दीज आर वेरी वेरी बैड कंपेनियंस टू ट्रेवल विथ। वो हमारी जिंदगी कभी भी ऊपर नहीं ला सकता, वो हमारी जिंदगी हमेशा डिस्ट्रक्ट ही कर सकता है। स्पिरिचुअल वैल्यूज वर्च्यूज या स्पिरिचुअल लॉस पे और एक उदाहरण जो मुझे सत्य घटना है बहुत ही पसंद है, 16th यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उनका नाम बहुत ही मशहूर है ह्यूमैनिटी पे, बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, द बेस्ट प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और उनके सामने भी कई कठिनाइयां आई, जब वह प्रेसिडेंट बने तो कई लोगों को, कई नहीं मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं हुआ कि ये एक ऑर्डिनरी इंसान यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कैसे बन गए। और आपको यह जानकर अचरज होगा कि जब वह फर्स्ट टाइम आफ्टर बिकमिंग द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वह जब आए फर्स्ट टाइम सेनेट में अपना भाषण देने, तो पूरा हॉल पैक था। उस पूरे हॉल में ऑलमोस्ट 90-95% वेर हिज राइवल्स, एंड बिफोर ही कुड स्टार्ट हिज व्यूज, कहीं दूर से एक जोर से आवाज आई, मिस्टर लिंकन आप यह मत भूलना कि आपके पिता एक शू मेकर है, यानी कि एक मोची है, वो जूते बनाते हैं। देखिए आप प्रेसिडेंट को किस तरह एड्रेस किया गया उस स्केप्टिक ने जो उनके राइवल थे। तब मिस्टर, उस जगह अगर हम आप कोई भी होते तो एकदम डिस्टर्ब हो जाते थे कि ऐसा कैसे कि किसी ने ऐसा कह दिया, दैट टू टू अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने एकदम शांति से उनकी तरफ देखा जिसने यह प्रश्न उठाया था, और उन्होंने कहा कि सर सिर्फ आप अकेले नहीं हो, यहाँ इस हॉल में और कई लोग हैं जिनके जूते मेरे पिताजी ने बनाए हैं, यानी कि ही हैज मेड शूज नॉट जस्ट वन ओनली फॉर यू, बट देर आर सो मेनी पीपल फॉर होम ही मस्ट हैव मेड शूज, और मुझे गर्व इस बात का है कि आज तक उनके बनाए हुए शूज में एक भी कंप्लेंट नहीं आई, यानी कि वो क्वालिटी उतनी अच्छी बनी थी। और अगर आपके शूज में कोई भी खामी हो तो अब तो मेरे पिताजी नहीं रहे, आप मेरे पास लाइए, मैं आपके जूते ठीक करके दूंगा। द होल हॉल वॉज साइलेंट एंड कोई कुछ नहीं बोल, इट वॉज दे वर स्टंड एंड सरप्राइज बाय हिज आर्टलेस आर्ट ऑफ रिपार्टी। एकदम ठंडे स्वभाव से उन्होंने यह जवाब दिया कि दिस इज वॉट इट इज, एंड दे वेर पुट टू शाइनेस कि वॉट हाउ डिड वी एड्रेस एंड हाउ एरोगेंटली डिड वी स्पीक टू द यूएस प्रेसिडेंट। और एक दृष्टांत बहुत ही महत्व का है, और वो भी एक सत्य घटना ही है। नेल्सन मंडेला जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, वह एक बार जब प्रेसिडेंट थे उनकी टीम के साथ बाहर जा रहे थे, और उन्होंने कहा चलो आज होटल में खाना खाने चलते हैं, और वो और उनकी सेक्रेटेरिएट टीम होटल में खाना खाने गए, और वो बैठे एक टेबल पे, और उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा सा इंसान कॉर्नर पे फटे हुए कपड़े और बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन था, और बिल्कुल उसके पास शायद पैसे नहीं थे, वहां कॉर्नर पे बैठे बैठे वो अपने खाने का इंतजार कर रहा था। तो नेल्सन मंडेला ने उनकी तरफ देखा, उनके सेक्रेटरी से कहा कि वो इंसान बैठा है उसको यहाँ अपने टेबल पे लाओ और मेरे बाजू में उनको बिठाओ। जैसे ही वो सेपीएस उनके गए और उनको लाए, तो ये बूढ़ा सा इंसान जो बिल्कुल गरीब था वो थर थर कांपने लगा। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि आप क्या खाओगे, तो उन्होंने जो भी मंगाया था उनके टेबल पर आ गया और बिल्कुल कांपते कांपते ही जस्ट स्वॉलोड हिज फूड. ही मे नॉट इवन हैव चूड इट प्रॉपरली, ही स्वॉलोड हिज फूड एज सच. एंड एकदम घबराते घबराते वो वहां से निकल गया बिना बिल पेमेंट किए. तो मंडेला जी ने अपने सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी से कहा उनका बिल हम दे देंगे. और फिर सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट से आकर कहा कि आपने उस पर दया खाई, उसको कुछ साइकिक प्रॉब्लम लग रही है, देखिए किस तरह से वो कांप रहा था और किस तरह से उसने अपने पैसे, खाने के पैसे भी ऑफर नहीं किए, जैसे ही पेट भर के खा लिया वो चला गया. कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसके माइंड में. तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि उसके मन में कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों कांप रहा था. जब सालों पहले मैं जब जेल में था, फॉर मेनी इयर्स ही वॉज इन जेल, और जब मैं जेल में था तो मुझे बहुत ही पीटा गया था, लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल पुलिस ने बहुत ही पीटा था. और ये जो था इंसान, तब वो जवान सा था, वो जेल वार्डन था, और वो जब बहुत ही पीटने के बाद मेरे बैरिक्स में मुझे लाया जाता था तो मुझे बहुत ही प्यास लगी थी, तो मैंने कहा पानी दीजिए, पानी पीना है. और इसी इंसान ने, जो आज बूढ़ा होके यहां बैठा था, वही इंसान ने इंस्टेड ऑफ गिविंग मी वाटर ही यूरिनेटेड ऑन माय फेस, उसने मेरे फेस पे पेशाब कर दिया. और उसको वह घटना याद आ गई कई साल पहले की, तो उसने सोचा कि आज बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आई विल टेक रिवेंज विथ हिम, बट माय वैल्यूज डजंट परमिट मी टू डू सो. और इसीलिए ही वॉज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल सिटिंग बिसाइड्स मी एंड टेकिंग फूड. नाउ दीज आर स्पिरिचुअल लॉज, जैसे और कई सारे इंस्टेंसेस मैं आपको दे सकती हूं. जैसे सुबह ही एक स्पीकर ने कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर. तो ये भी एक थिंकिंग ऑफ इनजस्टिस एट अ स्मॉलेस्ट माइन्यूट प्लेस एनीवेयर इन द एंटायर यूनिवर्स इज अ पोटेंट थ्रेट टू जस्टिस ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स. और एक वैल्यूज की घटना हमारे देश में हुई, मैंने आपको इंस्टेंस यूएस का दिया, साउथ अफ्रीका का, लेकिन 1990s में मेरे ख्याल से, जब हमारे भारत देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे, तो ही वॉज दैट टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और एक बार वह ओरिसा गए, वहां से जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए एकदम सवेरे सवेरे उनकी पूरी पुलिस टीम और उनकी पूरी जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह के साथ में वो जा रहे थे. तो वो जैसे ही मंदिर के द्वार, जगन्नाथपुरी ओरिसा में आता है, जैसे ही मंदिर के द्वार के पास वो पहुंचे तो उसने जोर से आवाज सुनी, रंगनाथ बाबू, उनका नाम जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंगनाथ बाबू, रंगनाथ बाबू, ऐसे दो तीन बार किसी ने कहा. तो उसने सोचा नाम तो मेरा ही है, लेकिन मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूं, किसने मेरा नाम ये लिया होगा. तो इधर उधर उसने देखा तो कॉर्नर पे, द्वार के कॉर्नर पे एक भिखारी बैठा था एंड वेरी शैबी, और एकदम बदबू आ रही थी उसके शरीर से. He was suffering leprosy and various other diseases, और बहुत ही बदबू आ रही थी. तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने उनके थोड़े से नजदीक जाकर उनसे कहा कि आपने क्या मुझे बुलाया? उसने कहा हाँ रंगनाथ बाबू, आप मुझे पहचानते नहीं हो? उसने कहा नहीं. तो उन्होंने कहा कि जब कुछ साल पहले, when you were practicing in Odisha High Court, तब लोअर कोर्ट ने मुझे कन्विक्ट किया था क्योंकि मैंने 3 खून कर दिए थे, आई हैड मर्डर्ड 3 पर्सन्स. और जब मैटर हाई कोर्ट में आई तब आप मेरे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे और आपने मुझे डिफेंड किया और आपने मुझे एक्विट करवा दिया और आपने मुझे फ्री करवा दिया. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये तो अदालत इंसानों की अदालत है, लेकिन ऊपर और एक अदालत है जहाँ से कोई नहीं बच सकता। और देखिए, तब मैंने खून करके भी आपने मुझे बचा लिया, लेकिन वहाँ की अदालत से मैं नहीं बच पाया और मेरे कर्म की सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा तब चीफ जस्टिस ऑलरेडी थे इंडिया के, उनको बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने अपने पॉकेट में से 100 रुपये की नोट निकाल के उनके पास रख दी। वो मंदिर गए, दर्शन भी कर लिए और फिर मंदिर से बाहर आके उनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को एड्रेस करना था। और जब वो एड्रेस कर शुरुआत उन्होंने की, तो उन्होंने ये इंसिडेंट जो थोड़ी देर पहले ही हुआ था वो नरेट किया कि देखिए वो इंसान की आज हालत क्या हो गई। और उनके आंख में बिल्कुल आंसू टपकने लगे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को बताते बताते कि उन्होंने एक इतनी बड़ी मुझे लेसन सिखा दी कि इंसान की अदालत से इंसान बच सकता है, लेकिन ऊपर की अदालत से अपने कर्मों का फल हमेशा ही भुगतना पड़ता है। सो दीज आर नथिंग बट स्पिरिचुअल वैल्यूज। कहा जाता है कि जो भी जो उनको कहते हैं कि जो भी रूडनेस है, जो भी चालाकी है, वो ह्यूमन बीइंग्स में ज्यादा होती है। हम कई बार ऐसे ही सोचते हैं ना कि देखो पशु पक्षी बाकी के प्राणी एक दूसरे की मदद करते हैं, बट इट्स ह्यूमन बीइंग्स हु आर वेरी सेल्फिश। तो एक चाइनीज जूरिस्ट सुन ज़े ने कहा है कि मैन हु इज बाय हिज वेरी नेचर विकेड नीड्स टीचिंग एंड डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड और रिफॉर्म्ड। The ancient rulers understood the viciousness of man and therefore created laws, morals and court opinions, but they never got transformed or disciplined. ये सब होते हुए भी तो आज ये जो कॉन्फ्रेंस revisiting convergence between spiritual laws and legal laws, इस चीज का महत्व है कि हमारे पास कानून है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन द मिसिंग डायमेंशन इज स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो हमें यहां भले ही 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो लेकिन हमें भरपूर मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हम में से आप में से सभी लगभग वकीली है, सभी कई सारे जजेस भी है। Many a times we criticize the administration of justice, pendency of cases, so on. किसी एक वक्ता ने कहा कि justice should not only be done but seem to have been done. और किसी एक speaker ने कल कहा कि mediation is the best way to resolve dispute. लेकिन दोनों तरफ की arguments है। It is said that justice delayed is justice denied. But justice hurried is also justice buried. You can't just hurriedly, you know, dispose of and say that we will do this arbitration, mediation, and it is buried at times. Or arbitration and conciliation 1996 ki act hote hue bhi, jab tak it is not blend with the values, the success I think of arbitration, conciliation, negotiation, mediation, it is at a very, very lower rate as such, because disputes still continue post the arbitral award as such. So administration of justice, what is it? It's maintenance of one's right within the political community by means of physical force of state. And the central idea is, as it was said by someone, that it should not only be done but seem to have been done. But delays, technicalities, cost of litigation are the main impediments or hurdles in administration of justice. मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में, सिटी सिविल कोर्ट में, बाकी की कोर्ट में 12 साल प्रैक्टिस की है। हर एक कोर्ट के प्रोसीजर्स अलग है और हर एक कोर्ट की जो जो फॉर्मेलिटीज है, रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शंस, प्लेसिंग इट, प्रेसिपी देना, ये वो हर एक कोर्ट की अलग अलग है। So these are also which are causing impediment in smooth administration of justice. तो इसीलिए कहा जाता है कि therefore the principles of natural justice. अभी जब values की बात आती है तो आप सभी ने सुना होगा natural justice, equity and good conscience were introduced because laws are defective, systems are defective, so as to ensure कि सभी को न्याय मिले. But yet the system is not free from defects. आज सुबह के सत्र में जब aims and objectives की बात हुई तो मैंने हमारे सबसे पहले पेट्रन जूरिस्ट विंग के पेट्रन लेट जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर जी का नाम लिया. उन्होंने कहा कि वन मिसिंग डायमेंशन इज डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. हम सब में डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी है लेकिन हम रियलाइज नहीं करते. सिस्टर शिवानी बहन ने आज ही कहा कि यू हैव टू हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ टू अराउज एंड इग्नाइट दैट डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी विच इज एग्जिस्टिंग इन ईच वन ऑफ अस. लेकिन आज हम देखते अभी शी मेंशनड अबाउट COVID-19 पेंडेमिक और मुझे पता है वो दो साल ढाई साल तीन साल शायद जब हम घर पे थे नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का जो स्टीप इंक्रीज क्राइम्स का स्टीप इंक्रीज था डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ही इंक्रीज हुआ माइग्रेंट वर्कर्स और उसमें भी विमेन माइग्रेंट वर्कर्स सबसे ज्यादा सफरर्स थे. तो क्यों होता है ऐसे और ये क्राइम्स क्यों होते. आज भी हम एनसीआरबी रिपोर्ट अगर देखेंगे तो क्राइम की कोई कमी नहीं हुई. हालांकि थ्योरीज जो है जो क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़ाई जाती है डेटरेंट प्रिवेंटिव रेट्रीब्यूटिव रिफॉर्मेटिव एंड कॉम्पेंसेशन थ्योरी अगर स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वी एडवोकेट फॉर रिफॉर्मेटिव थ्योरी. और मैं तो ह्यूमन राइट्स की स्टूडेंट रही हूं तो मैं काफी बार कहती हूं कि एबॉलिश डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट. मेनी अ टाइम्स मेरे स्टूडेंट्स से फैकल्टीज से बहुत बहस होती है आप ऐसा कैसे. कई सारे ऐसे टेररिस्ट है जिनको तुरंत ही हटा देना अच्छा होता है लेकिन जब जीवन ऊपर वाले ने दिया है तो कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस एक इंसान भले ही चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या चीफ जस्टिस हो उनका कोई हक नहीं बनता है. और हरेक जो ऑफेंसेस है उसमें डेथ सेंटेंस के साथ इन ऑल्टरनेटिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. और एंड माइंड यू लेट जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर के जजमेंट्स जिन जिन लोगों ने पढ़े होंगे ही हाईली एडवोकेटेड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट रादर देन डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट. तो ये कब होता है क्योंकि जब डेथ सेंटेंस की बात आती है द प्रिंसिपल फॉलोड इज ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस. अभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आपके लिए डेफिनेशन अलग होगा मेरे लिए अलग होगा वो भाई के लिए अलग होगा. हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन. एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ द स्पीकर जिन्होंने बताया कि एक ही कोर्ट के अलग 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 जजमेंट्स होते लेकिन आज तक यही प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस. और जुर्म क्यों होता है इज इट आउट ऑफ कंपल्शन इज इट आउट ऑफ और इज इट आउट ऑफ टेम्पटेशन. जब रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात आती है तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि इट्स बिकॉज ऑफ द क्लैश बिटवीन द कैरेक्टर एंड मोटिव ऑफ अ पर्सन. ईदर द टेम्पटेशन फॉर द मोटिव इज हायर और द रिस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन द कैरेक्टर इज लोअर. और इसीलिए एक जुर्म होते रहते. महात्मा गांधी जैसे विद्वान जब हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने कहा कि हेट द क्राइम एंड नॉट द पर्सन. डोंट नेम हिम एज अ क्रिमिनल. वी हैव प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. वी हैव ऑल दीज जनरल प्रिंसिपल्स विच प्रोटेक्ट. हेट डोंट हेट द क्रिमिनल गिव हिम अ चांस. यही ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है दैट ट्राई टू शेप हिम इन ऑर्डर टू मेक हिम बेटर मेंबर ऑफ द सोसाइटी. यानी कि रिफॉर्म हिम इन सच अ वे दैट ही विल सर्व द सोसाइटी. क्या हो रही है कई सारे डेवलप्ड नेशंस है जिन्होंने फांसी की सजा निकाल दी है और निकालने के बाद भी द रेशियो ऑफ क्राइम इज वेरी वेरी लो. तो ये जहां तक हमारा दृष्टिकोण, आप जस्टिस वी आर कृष्णायर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस डी ए देसाई के जजमेंट्स देखेंगे, उन्होंने देव हाईली प्रोपगेटेड दैट डेथ सेंटेंस ओनली इन केस ऑफ एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी एंड एक्सेप्शनल डिप्रेविटी, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इज एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस काफी सारा वो काम कर रहे पीस के लिए, शांति के लिए, वैसे ही एक डॉक्यूमेंट 1948 में बना था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, और उसमें भी प्रीएम्बल है, और उसमें कहा था, प्रीएम्बल का एक सेंटेंस मैं आपको चुन के बताती हूँ, that it's in the form of recital, that whereas recognition of inherent dignity, of equal and inalienable right of all members of human family, it's the foundation of justice, freedom and peace in the world. ये तीन शब्द आप देखिए, justice, freedom and peace. Peace की बात इसमें भी आती है. And the very first article begins with this word, that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Not just in India, across the universe. Sabhi human beings. Martin Luther King ne isliye kaha tha, ki I have a dream that a day will come when my four little children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. यानी कि हम देखिए कितना भेदभाव रखते हैं। अगर being a woman, if I am a disadvantaged group, अगर मैं handicapped होती, अगर मैं mentally retarded होती, अगर मैं prison में दो दिन समझो मुझे रखा गया और मैं बाहर निकलती, society किस दृष्टिकोण से मेरे सामने देखता। So you know, all are born free and equal in dignity and rights, and they are endowed with reasons and conscience, and therefore they should act towards one another in the spirit of brotherhood. Yani ki ek insaan se dusre insaan ka vyavhar is tarah se hona chahiye ki aap apne aap ko jitna mahatva samajhte ho utna hi mahatva samne ke insaan bhi hai. Justice P.N. Bhagwati ka Shiv एडीआर जबलपुर, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस आप सभी को याद होगा, इट्स अ केस ऑफ ब्लो ऑफ सिविल लिबर्टीज। उनके मृत्यु के कुछ साल पहले ही, 35 इयर्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई 35 साल पहले जब मैं बेंच पे बैठा था और मैंने मेजॉरिटी को सपोर्ट किया, अगर आज मुझे मौका दिया जाए तो मैं एक डिसेंटिंग जज जस्टिस एच आर खन्ना, हंसराज खन्ना को सपोर्ट करूंगा। तो ये मोरालिटी और एथिक्स जो हमारे मन में है, जो हमारे विचारों में है, उसी वजह से ये बात बाहर आ जाती है। और कुछ ही साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आई एम श्योर ही मे बी रिलीव्ड ऑफ दिस बर्डन जो 35 साल से उन्होंने अपने मन में रखा कि मेरे से गलती हो गई, ब्लेटेंट एरर दैट आई हैव कमिटेड इन माय लाइफ। तो उस ऐसे कहीं और भी दृष्टांत है कि व्हेन अ पर्सन realizes that you know this is what it is happening, तो हम किस तरह से human एक अच्छे इंसान बन सकते। मेरे एक आज दृष्टांत में आपके सामने देख बताने जा रही हूं, एक स्टूडेंट LLM के है, दोनों हस्बैंड वाइफ एडवोकेट है अभी भी है, और इतने सीधे साधे पूरे साल मैंने उनको पढ़ाया, वो कभी मुंह से शब्द नहीं खोलते थे, रोज आके लेक्चर सुनते थे। जब उनकी LLM पूरी हो गई, पास आउट हो गए, बाद में मुझे पता चला कि दिस कपल स्टार्टेड एक वैन जिसका नाम उन्होंने रखा है दर्द से हमदर्द तक, दैट इज लीगल एड ऑन द व्हील्स। वो लोग गांव गांव, हर एक जगह, पुलिस स्टेशन, जेल्स, हर एक जगह जिन जिन लोगों को मुफ्त में लीगल एड चाहिए, एडवोकेट चाहिए, वो उनकी मदद और उनका फैमिली इतना दो में से इतने एक्सपांड हो गए। और वह बात मुझे अभी 2 महीने पहले ही पता चली कि दे हैपन टू बी माई स्टूडेंट। तो मेरे पास हालांकि नंबर नहीं था, जो स्टूडेंट का नंबर मेरे पास था उनको मैंने कहा कि ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ रहेंगे। आप सोचो जिन जिन लोगों की मदद हुई उन्होंने कितनी दुआएं दी होगी इन लोगों को, और अभी भी वो कितनी दुआएं लेते होंगे। एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ चार्ज, नो कॉस्ट एट ऑल। और टाइटल रखा दर्द से हमदर्द तक, यानी कि यू हैव पीपल हु कैन कम टू योर रेस्क्यू एज सच। तो बाबा भी हमें रोज की मुरली में, आप तो शायद स्पेशल क्लास में बैठते होंगे, बीकेज होंगे वो मुरली क्लास में बैठते, बाबा भी हमें मुरली में रोज यही सिखाते हैं। हालांकि बिफोर परस्यूइंग लॉ आई हैव डन माई BSc इन केमिस्ट्री, सो इट वॉज अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम साइंस टू लॉ। एंड साइंस में हमें केमिस्ट्री में सिखाया जाता है देर इज अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, यू नो, सो यू एलिमिनेट ऑल द रेसिड्यूरी थिंग, जो रिक्वायर्ड है उनको आप रखो, फिल्टर हो जाता है, जो नेगेटिविटी है वो सब फिल्टर हो जाता है। तो उसी तरह बाबा हमें सिखाते हैं टू एलिमिनेट एटलीस्ट इम्बाइब 1 पॉजिटिव थॉट। सिस्टर शिवानी दीदी का नेक्स्ट क्लास है ही, और वो पॉजिटिव थॉट हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं। रोज की मुरली में एटलीस्ट रोज मैं सुनती हूँ, उसमें बाबा की एक सीख मुझे याद आती ही है कि किसी एक चीज तो स्टार्ट करो, किसी को भी दुख मत दो। ये बात मुझे बहुत ही मन में बैठी है, फिर भी गुस्सा आ जाता है, कभी बोल देते हैं करते हैं, लेकिन कितना टफ है बाबा। इसीलिए कहा जाता है ना कि वॉट इज टफेस्ट इन लाइफ इज टू नो दाई सेल्फ। हम जानते हैं कि कुछ चीजें अच्छी है, वर्च्यूज अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो निकालते निकालते यू हैव टू प्रैक्टिस। सो एटलीस्ट इम्बाइब 1 पॉजिटिव थॉट इन अ डे। और बाबा की मुरली आप यहां से जब जाओ 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद, जरूर आप आपके नजदीक के रेसिडेंस के सेंटर के पास आप जाइए और आप 7 दिन का कोर्स कीजिए, ऑल एट योर कन्वीनियंस, जस्ट फॉर 1 आवर अ डे। हमारे BK के सिस्टर्स आपको बताएंगे कि व्हाट इज दिस नॉलेज, व्हाट इज कल्पवृक्ष। शिवानी दीदी ने कहा 4 युग होते हैं, हम अब कहाँ पहुंचे हैं और अब क्या होना है। हम देख रहे हैं कि विनाश हो रहा है, वॉर इज टेकिंग प्लेस, इट हैज अफेक्टेड इंडिया ऑल्सो जस्ट इन द रिसेंट पास्ट, देन द सीज फायर ऑपरेशन एज सच, एंड नाउ वी फील वी आर सेफ, बट वन डजन नो हाउ मास डिस्ट्रक्शन इट हैज टेकन प्लेस इन डेवलप्ड नेशंस, इन कैलिफोर्निया, इन सो मेनी अदर प्लेसेज एज सच। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? परहैप्स देर इज अ डिक्लाइन इन वैल्यूज। और हम आज इस समय पर, संगम युग पर है, जहां समय बहुत ही कम बचा है, इट विल ट्रांसलेट लेटर ऑन इनटू सतयुग। सुदेश दीदी जी ने हमें कहा है कि यू नो वेरी फ्यू, इतने सारे लोग भी नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने पालना की, जिन्होंने धारणा की है, बाबा ने जो हमें रोज की मुरली में सिखाते हैं, वह जरूर कुछ बनकर सतयुग में आएंगे। दिस थॉट ऑफ माइंड मे बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, लेकिन जब आप 7 दिन का कोर्स किसी सेंटर में करोगे, तब यू विल एक्सेप्ट दैट हाउ इट मेक्स अ डिफरेंट इवन इन योर पर्सनैलिटी, इन योर थॉट प्रोसेस। दिन के 24 घंटे, इवन वेन यू स्लीप एट नाइट, हमारी ब्रेन कभी बंद होती ही नहीं, योर थॉट प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर मोर प्रोन टू गेटिंग अटैच टू नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, बट इग्नोरिंग दैट यू विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो हाउ डू यू इम्बाइब एटलीस्ट 1 पॉजिटिव थॉट। सो नॉट इन द होल डे फॉर 12 आवर्स, 12 मिनट्स, 12 सेकेंड्स एटलीस्ट, यू नो, मेंटेनिंग साइलेंस, मेंटेनिंग पीस, ट्राइंग टू यू नो बी कंट्रोल ओवर योर एंगर, एज बाबा टेल्स अस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दीज आर वेरी वेरी बैड वाइजेस टू ट्रेवल विद दे आर एनिमीज ऑफ योर वर्च्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज जो बाबा की मुरली में हमें सिखाई जाती है इज हाउ टू कीप देम अवे ऑल थ्रू आउट द डे. यहां आपने देखा होगा हर एक एक घंटे के बाद उनको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं. तो ट्रैफिक कंट्रोल इट्स कंट्रोलिंग अवर थॉट प्रोसेस. जब हम रुक जाते हैं और एक छोटा सा सॉन्ग एक मिनट आधा मिनट का बजता है वेयर बाबा रिमाइंड्स अस दैट कनेक्ट योर सोल टू द सुप्रीम सोल रियलाइज व्हाट योर ट्रू सेल्फ इज बिकॉज बॉडी इज मॉर्टल इट्स ओनली द सोल विच विल बी इमॉर्टल एज सच विच नेवर डाइज एंड दैट गोज विथ योर संस्कार एज सच एंड इन टू एन अदर बॉडी विच आई एम श्योर सभी धर्म सिखाते हैं ऑल द रिलीजियंस टीचेज अस दैट. इन द एंड आई हैव जस्ट 10 minutes बिफोर यू एंड आई विल स्टॉप डॉट 1 minute बिफोर 6. मुझे आपको जब वैल्यूज की बात होती है तो हम चाहे बाबा से सीखे हमारे शिक्षक से सीखे चाहे अच्छे इंसान से हम कुछ अच्छी बातें सीखे तो इट्स ऑल वन एंड द सेम बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन योर ओन पर्सनैलिटी. तो मुझे याद है कि कन्फ्यूशियस नाम के बहुत ही विद्वान चाइनीज फिलोसोफर थे. बहुत विद्वान लेकिन उन्हीं की बात से मैं कह रही हूं. उनको बहुत घमंड आ गया था कि मैं दुनिया का सबसे विद्वान इंसान हूं. और एक बार उन्होंने सुना कि कहीं से पता चला कि अ थ्योरी न्यू थ्योरी बाहर निकली है विच इज मच मच डीपर देन द नॉलेज विच ही पजेसेस. तो वो एकदम बेचैन हो गए और उन्होंने सोचा कि ये थ्योरी ऐसी कौन मेरे से ज्यादा कौन होशियार है मुझे जानना है ये ऐसी कौन सी नई थ्योरी उत्पन्न हुई है जो कि मेरे से भी ज्यादा इंटेंस नॉलेज रखती है. और वो चलते चलते उस जेन स्कूल तक गए. जेन के स्कूल मास्टर से उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दैट न्यू थ्योरी आई एम हियरिंग कि आपकी स्कूल में इवॉल्व हुई है. वो हेडमास्टर बोले कि बहुत ही आसान है ये थ्योरी कोई ज्यादा टफ जानने के नहीं है बहुत ही आसान है. एंड ही सेड आई कैन समराइज दिस थ्योरी इन वन सेंटेंस एंड ही सेड टू अवॉइड डूइंग ईविल डू एज मच गुड एज यू कैन. तो ये जो कन्फ्यूशियस थे वो एकदम बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि आई हैव वॉक्ड सो मच ऑफ माइल्स जस्ट टू नो कि एक 3 साल का बच्चा या एक 5 साल का बच्चा भी बाय हार्ट बता सकता है कि दिस इज द थ्योरी इसमें क्या नया है. ही सेड सर प्लीज कंसीडर कि एक 3 साल का बच्चा अगर मगअप कर सकता है कि टू अवॉइड डूइंग ईविल डू एज मच गुड एज यू कैन तो एक 80 साल के विद्वान कन्फ्यूशियस स्कॉलर वो क्यों नहीं ग्रहण एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो क्यों अपने आप में वो इम्बाइब नहीं कर सकते. तो ये जानने की एक बात है. और कन्फ्यूशियस के काफी सारे ऐसे कभी आप पढ़ना किसी किताब में ऐसे काफी सारे दृष्टांत थे जो हमें वैल्यू सिखाते हैं एंड दैट ब्रिंग्स अ कन्वर्जेंस. लॉस तो आप सभी विद्वान हो लीगल लॉज में लेकिन ये स्पिरिचुअल लॉज क्या है उसका और एक लास्ट में दृष्टांत आपके समक्ष. और ये सत्य घटना है हुई थी कि कन्फ्यूशियस जब एज अ टीचर लास्ट स्टेज में थे और अपने डेथ बेड पे थे और बिल्कुल उनकी मौत नजदीक लास्ट के आखिरी सांस गिन रहे थे तो सारे उनके डिसाइपल्स उनके आजू बाजू में खड़े थे तो बोल भी नहीं पाते थे. उन्होंने एक डिसाइपल जो नजदीक था उनका चेला उनको इशारे से बुलाया और उनको कहा कि देखिए अभी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कभी भी मेरा शरीर मैं छोड़ सकता हूं आप मेरा एक काम कीजिए मैं अपना मुंह खोलता हूं और आप मुझे बताइए कि मेरे मुंह में क्या है. और उन्होंने अपना मुंह जो ही वॉज मोर देन 80 खोला उन्होंने अपना मुंह तो वो डिसाइपल ने मुंह में झांका और उसने कहा कि कुछ नहीं दिखाई देता है सिर्फ जीभ दिखाई देती है आपके मुंह में. तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए आईने के सामने खड़े रहिए, आप खुद का मुंह खोल के देखिए और कहिए मुझे कि आपने क्या देखा। तो वो गए, देखा और आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपना मुंह खोल के देखा, उसमें जीभ भी है, देयर इज टंग एंड देयर इज टीथ ऑल्सो। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि अब मेरी सांसें खत्म होने जा रही है, मेरा लाइफ का आखिरी लेसन मैं आपको दे रहा हूं कि इमेजिन जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में सिर्फ जीभ रहती है, दैट्स टंग, और वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर एक एक करके सारे दांत आते हैं विच इज टफ एंड रफ। तो जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब उसकी आखिरी स्टेज आती है तो एक एक करके सब दांत गिरने लगते हैं और फिर सिर्फ टंग रह जाती है जो कि सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द सॉफ्टेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। तो उन्होंने कहा कि इस पर से आपको बस मेरा लास्ट लेसन मेरे सारे स्टूडेंट्स डिसाइपल के लिए यही है कि ट्राई टू बी सॉफ्ट, बिकॉज एनीथिंग दैट इज सॉफ्ट विल लास्ट फॉर एवर एंड यू विल बी रिमेम्बर्ड इवन आफ्टर योर डेथ। एनीथिंग दैट इज रफ विल गो अवे, इट विल फॉल ऑफ। जो सॉफ्ट है उसकी याद आपकी लास्ट तक रहती आती रहेगी। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा था कि वी हैव टू सर्व अवर नेशन, द सर्विस टू आवर नेशन इज सर्विस टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु सफर। उन्होंने कहा द एम्बिशन और एंड दैट कैन बी डन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा कि द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आर टाइम्स, द एपोस्टल ऑफ पीस, महात्मा गांधी, कि सभी किसी के आंख में आंसू ना हो, टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। क्या संभव है इस कलयुग में कि हम सभी के आंसू पोंछे एंड दुख उनका हरे, हम उनका दुख निकाल सके? तो उन्होंने यह भी कहा इट मे बी बियॉन्ड अस, लेकिन जब तक किसी इंसान के आंख में आंसू रहे तब तक द वर्क विल नॉट बी ओवर। सो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। वर्किंग इज पॉसिबल ओनली इफ यू हैव दोज वैल्यूज विद इन योर थॉट्स, योर एक्शंस, योर रेगुलर हैबिट, एंड दैट इज वॉट वन नीड्स टू डेवलप। थॉमस पेन ने कहा है इन द राइट्स ऑफ मैन कि वी शुड कंसिडर दैट द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैन काइंड आर माई ब्रदर्स, एंड टू डू गुड इज माई रिलीजियन। तो जब धर्म की बात आती है तो कितने झगड़े होते हैं हमारे देश में। हमें सिर्फ भारत देश का नहीं देखना है, पूरा विश्व मेरा कंट्री है, द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैन काइंड आर माई ब्रदर्स, ये सभी मेरे भाई बहन है, और किसी के लिए कुछ अच्छा करना वही मेरा रिलीजियन है। बाबा हमें किसी न किसी तरह रोज की मुरली में यही सिखाते हैं कि हाउ टू बी गुड टू अदर्स। जैसे किसी को दुख मत दो, जैसे कम बोलो, मीठा बोलो, लुक एट हाउ इट यू नो हैज एन एक्शन और हाउ इट हैज द रिएक्शन ऑन द अदर पर्सन, हाउ अ पर्सन इज एबल टू एब्जॉर्ब दैट एज सच। एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने ठीक ही कहा था कि वी नीड टू कंटिन्यू अवर ड्यूटी। उन्होंने कहा कि नो मैन कैन बी परफेक्टली मॉरल टिल ऑल आर मॉरल, नो मैन कैन बी परफेक्टली फ्री टिल ऑल आर फ्री, एंड नो मैन कैन बी परफेक्टली हैप्पी टिल ऑल आर हैप्पी। तो हमें सिर्फ अपनी खुशी, अपना फ्रीडम, अपनी मॉरालिटी वो ही नहीं देखना है, हमें और लोगों को भी पहुंचाना है। सो दिस कैन नॉट बी अचीव जस्ट बाय द लीगल लॉज, इट हैज टू बी अ कंप्लीट ब्लेंड बिटवीन स्पिरिचुअल लॉज एंड द वर्ल्डली लॉज और व्हाट वी टर्म एज लीगल लॉज एज सच, एंड दैट इज वेयर वी कैन थिंक ऑफ द सतयुग एंड विच विल यू नो बी अ वेरी हेवन on the earth as such, because when we speak of Satyug we look up at the sky. You don't need to look up at the sky, it will be a transformation of the very existing earth planet into a Satyug itself, which can happen only with the help of spiritual values. Theek 3-2 minute pehle main apna vaktavya yahin रोक रही हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव सिस्टर शिवानी दीदी विथ अस प्रोबेबली आई थिंक शी हैज रीच्ड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच ओम शांति जरूर याद रखिएगा कि इवन इफ यू आर नॉट लॉयर्स दीज वैल्यूज विल हेल्प यू इट विल हेल्प द वर्ल्ड इन अ लॉन्ग रन स्टार्ट द एक्सरसाइज राइट आफ्टर योर रीचिंग होम एटलीस्ट स्टार्ट विद द 7 days कोर्स एंड देन फ्रीक्वेंट विजिट टू द सेंटर्स Thank you so much and Om Shanti.